मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। 14 सितंबर 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल दो दिनों के बाद आज फिर से आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी में जो 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं उसके लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं अभिषेक चौहान मुरादाबाद से, विकास राव दिल्ली से, मालवीर सिंह हाथरस उत्तर प्रदेश से, अनुज कुमार फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से और रंजना आशुतोष तिवारी सीतापुर उत्तर प्रदेश से। अभिषेक, विकास, मालवीर, अनुज और रंजना, आप सभी का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट अक्टूबर और फरवरी की क्लास में आने वाले हैं, लगातार मैं उन लोगों के लिए समय समय पर कुछ इंस्ट्रक्शंस देता रहता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि वो उन इंस्ट्रक्शंस पर पूरा पूरा ध्यान भी दे रहे होंगे। मित्रों, सच पूछे तो मुझे इस बात की बड़ी आशंका रहती है और सच कहूं तो थोड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं वे इन सारे इंस्ट्रक्शंस को कितनी गंभीरता से लेते हैं। यहां तक कि यह बात उन स्टूडेंट्स के लिए भी सही है जो क्लास में नहीं आ रहे हैं और जो ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से अपने कैरियर को एक तरीके से रूप देना चाहते हैं, ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। उसका कारण यह है मित्रों कि पता नहीं बचपन से ही हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो कि हम लोगों के दिमाग में ये बात बड़े ठूस ठूस कर भर दी गई है कि जितना ज्यादा जानोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतनी ऊंचाई पर पहुंचोगे, उतनी बड़ी सफलता हासिल करोगे। मित्रों, मैं भी इसी बात पर यकीन करता था और यदि आप भी इसी बात पर यकीन कर रहे हो तो आपकी बिल्कुल कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि अपने कैरियर के आप और आगे बढ़ेंगे और उम्र बढ़ती चली जाएगी, जीवन में ज्ञान की अपेक्षा जब अनुभव जुड़ते चले जाएंगे तब आपको शायद विश्वास होगा कि नहीं, ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। वो कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है, उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है और उसके बाद फिर जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए दूसरी अनेक कई बातों की जरूरत पड़ने लगती है, जिसमें कहीं हमारा व्यवहार काम आता है, कहीं हमारी मानसिक मजबूती काम आती है, कहीं हमारा व्यक्तित्व काम आता है, कहीं हमारे रिलेशनशिप काम आते हैं और कहीं सच पूछिए तो थोड़ा बहुत संयोग भी काम आता है, जिसे आप अगर हमारे अपने भाषा में कहना चाहें तो भाग्य का नाम दे सकते हैं। लेकिन उसका रोल बहुत थोड़ा सा होता है क्योंकि भाग्य भी तभी काम करता है, संयोग भी तभी बनते हैं जब हम एक्शन में होते हैं, कर्म कर रहे होते हैं। इसीलिए मित्रों, मैं बार बार आप सभी से अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने की बात कहता हूं और आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि मेल के जरिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स की ये जरूरत महसूस हुई। मित्रों, चाहे काम आप छोटा करें या बड़ा करें, अगर आप छोटे काम को भी तरीके से करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा और बड़े काम को भी अगर तरीके से नहीं करेंगे तो वो छोटा ही रह जाएगा और सच पूछिए तो शुरू ही नहीं होगा। बार बार जो एक सवाल पूछा जाता है मुझसे मेल पर भी और फोन पर भी और एसएमएस के जरिए भी, वो ये होता है कि सर, हम इतनी जल्दी ऊब क्यों जाते हैं? सर, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता लेकिन मेरे माता पिता ये चाहते हैं कि मैं ये काम करूं और मैं उनके सपनों को पूरा करना चाहता हूं, मैं क्या करूं? चाहती हूं ये सारी चीजें एक ही में लेकर के चलिए आप लोग। सीधी सी बात है मित्रों, मैं इसको लेकर के कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि आप ऊबते हैं, यानी कि आप एक किसी भी काम की कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाते। देखिए, जो दशरथ मांझी की जो सफलता है वो एक तरीके से कंटिन्यूटी की ही सफलता है ना। उन्होंने एक काम में लग गए और लगातार लगे रहे और कितना नीरस काम रहा होगा, रोज जाना हथौड़ा और छेनी लेकर के और पत्थरों को तोड़ना, ढाए ढाए की आवाज आना, हाथ में उसकी झनकार को बर्दाश्त करना, सिर पर तपते हुए सूरज और बरसते हुए पानी और चलती हुई लू, इन सबको झेलना, जिसके बदले में कुछ नहीं मिलना था, ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिलना था। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो यह है कि प्लीज आप सब अपने आप से सवाल कीजिए, और करना ही चाहिए। देखिए, यह बात मैं केवल सिविल सर्विस की तैयारी के लिए ही नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं हर एक काम के लिए कह रहा हूं, उस काम के लिए जिसके लिए आपकी शिकायत होती है कि मैं ऊब जाता हूं। चाहे एक महिला घर में खाना बनाने से ऊबे, एक आदमी नौकरी करने से ऊबे, एक किसान अपनी खेती से ऊबे, एक नौजवान अपनी पढ़ाई से ऊबे, किसी भी काम में आपकी ऊब हो रही हो, होती ही है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए कि आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं ऊबता क्यों हूं। देखिए, जो आपका दिमाग जवाब देगा, हम सबका दिमाग लगभग दोस्तों एक ही पैटर्न पर काम करता है, क्योंकि हम लोगों के पास जो दिमाग है ना, वो सच पूछे तो वो अपना नहीं है, है ना, ये प्रोग्राम्ड माइंड है जो हमारे अंदर डाल दिया गया है। जैसे एक फ्लॉपी डाल दी जाती है या पेन ड्राइव डाल दिया गया, उसमें प्रोग्राम रिकॉर्ड करके, तो वही चीजें फिर स्क्रीन पर दिखाई देती रहेंगी। तो हमारा सदियों से जो हम सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो हमको बताया गया है, हमारा दिमाग उसी तरीके से हमारी समस्याओं के जवाब देता है। तो मेरी समस्या है कि मैं ऊबता क्यों हूं, तो वो जवाब देगा इसलिए क्योंकि एक ही काम को करते करते ना मोनोटोनस आ जाती है, निरसता आ जाती है, ऊब होने लगती है, इसलिए तुम ऊब जाते हो। लेकिन दोस्तों, इस जवाब का फिर परीक्षण कीजिए, है ना, इसकी चीर फाड़ कीजिए, इसका ऑपरेशन कीजिए, इस पर सीधे सीधे विश्वास मत कर लीजिए। क्योंकि यदि आप सीधे सीधे विश्वास कर लेंगे तो सीधी सी बात है कि फिर अब उपाय क्या रह गया, अब उपाय तो फिर यही रह गया कि आप इसको छोड़ करके आप दूसरा काम शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर दिमाग की आदत ही ऊबना है तो दूसरे काम से भी आप कितने दिन तक अपने आप को जोड़कर रख सकेंगे, उससे भी ऊबेंगे, चलिए दूसरे को भी छोड़ देंगे, तीसरे में लग जाएंगे, तीसरे के साथ भी यही हादसा होगा, कितनों को छोड़ेंगे, फिर किस में लगेंगे, फिर किसको कहेंगे कि हां ये मैंने हासिल किया। क्योंकि एक चीज को हासिल करने के लिए एक लंबे समयावधि की तो जरूरत होती है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन उसके लिए चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज बड़े वक्त की तो मांग करेगी ही, है ना। बरगद का पेड़ धान के पौधे की तरह 4 महीने में तैयार नहीं हो जाएगा जिसे आप काट लीजिए, वो तो मांग करेगा। तो फिर आप कितनों को छोड़ेंगे, तो फिर आप इसकी जांच पड़ताल कीजिए, इसका ऑपरेशन कीजिए, और जब आप ऑपरेशन करेंगे तो फिर आपका दिमाग कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा कि अगर किसी चीज में निरस्ता इसलिए आती है क्योंकि हम रोज रोज उसको करते रहते हैं, तो हम कितने सारे काम रोज रोज करते हैं, क्या सभी में हम ऊब जाते हैं? आप सांस लेना एक मिनट के लिए भी बंद नहीं करते, और जब से हम सब पैदा हुए तब से सांस ले रहे हैं। रोज हम लोग ऑलमोस्ट 7 घंटे तो सोते ही होंगे, लेकिन क्या सोने से ऊबते हैं? खाना रोज खाते हैं, लेकिन क्या खाने से ऊबते हैं? दोस्तों के साथ गपबाजी करते हैं, खेलते हैं, या मनोरंजन करते हैं, या टीवी सीरियल देखते हैं, या क्रिकेट का मैच सुनते हैं, कमेंट्री सुनते हैं, तो क्या इनसे ऊब जाते हैं? और यदि इनसे नहीं ऊबते, इसका मतलब ये तो है कि नहीं, हम एक काम को ही जब लंबे समय तक करते हैं तब ऊबना नहीं होता है। आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा, एक लॉजिकल आंसर मिलेगा, एक तार्किक आंसर। क्योंकि अगर एक ही काम को हर समय करते रहना, लंबे समय तक करते रहना ही ऊब का कारण हो सकता है, तो इन सब में भी ऊबना चाहिए। लेकिन इनसे तो हम नहीं ऊबते, न अभी ऊब रहे हैं और न जिंदगी के आखिरी दिन तक ऊबेंगे। तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये जो उत्तर है ये थोड़ा बहुत तो ठीक हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से तो ठीक नहीं है। ऊब का कारण सिर्फ यही तो नहीं है कि हम एक ही काम को लगातार करते रहते हैं। फिर अब आप दूसरी बात सोचिए, और दूसरी बात यह कि अच्छा चलिए हम उसी काम की निरस्ता के मोनोटोनस के कारण नहीं ऊबते हैं, अब हम ये जांचने की कोशिश करते हैं यार ये ऊबता कौन है, ये ऊबने वाला कौन है। थोड़ी सी गहराई पे उतरना पड़ेगा, है ना, जब आप सोचने लगेंगे कि धीरे धीरे आप गहराई पर आपको जाना ही पड़ेगा, सतह से तो चीजें बनती नहीं है। तब फिर आपको आप सोचिए कि ऊबने में किस किस का हाथ हो सकता है, शरीर का, विचारों का, मन का, इच्छा क्या, ये सारी चीजें थोड़े थोड़े अंतर से हैं, अलग अलग हैं, मतलब बिल्कुल एक नहीं है। तब फिर जब आप इनके बारे में फिर थोड़ा सा सोचना शुरू करेंगे, अपने ही बारे में सोचिए, आप दुनिया के बारे में मत सोचिए, है ना, क्योंकि सब कोई नहीं उबते। जो लोग बड़े काम करते हैं वो अपने काम से कभी नहीं उबते हैं, है ना। उबना, मैं उब जाता हूं, ये तो बड़ा खूबसूरत बहाना है, इससे खूबसूरत बहाना तो मैं समझता हूं कि दूसरा कोई नहीं हो सकता। तब फिर आप सोचिए कि उबने वाला कौन है, मैं जो व्यक्ति हूं, या मेरा शरीर है, या मेरा मन है, या मेरी इच्छा है, या मेरे विचार हैं। इन सब के बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू कर दीजिए। आप घबराइए मत, है ना, ये मैं कोई बहुत आपको कठिन बात नहीं बता रहा हूं, बहुत कठिन प्रैक्टिकल नहीं दे रहा हूं कि आप घबराने लगे। इनके अंतर को तो आप समझते ही है ना, शरीर कैसे उबता है। जब आप देखते हैं कि जब शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है रोजाना, जैसे आप देखिए शरीर कैसे उबता है, आपको अगर कहा जाए कि शुरू उठकर सुबह 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 उठकर आपको रोज आधे घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए, या 45 मिनट की मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, तो आप कुछ दिन तो जोश से करेंगे, लेकिन इसके बाद उठना मुश्किल होने लगेगा। इसका मतलब है कि शरीर उब रहा है, यहां पर हम कहें, क्योंकि शरीर को तकलीफ हो रही है, राइट। मन, मन को आप जानते हैं, मन के तो हम सब गुलाम ही हैं, बादशाह भी हैं, पता नहीं मन के हम क्या क्या हैं। हम मन ही हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो मन ही सब कुछ है। तो क्या मन उबता है? फिर विचार, यहां मन और विचार को थोड़ा सा अलग तरीके से देख लीजिए। विचार तो है कि हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, है ना, हमारे दिमाग में कोई विचार आते हैं, और वो विचार हमें किसी भी चीज के प्रति आकर्षित कर देता है, जोड़ देता है, या किसी भी चीज के प्रति हमें विकर्षित कर देगा, विकर्षण पैदा कर देगा, हमें उससे अलग कर देगा। जैसे मान लीजिए कि एक भोजन रखा हुआ है और आप प्योर वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, और आपको भोजन जो रखा हुआ है वो देख करके वो डिश बहुत अच्छा लगता है, मन करता है कि आप उसे खा लें, आपका बड़ा अट्रैक्शन उसके प्रति हो रहा है, आप मेनू में देखते हैं कि हां इसके क्या रेट है और मंगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वेटर आता है आप उससे पूछते हैं कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता है कि नहीं ये नॉन वेजिटेरियन है। जैसे ही आप सुनते हैं ये नॉन वेजिटेरियन है, आपका उसके प्रति विकर्षण होता है और आप उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, राइट। तो यहां आपका मन नहीं है, यहां आपका विचार है। जब आपके दिमाग में ये थॉट था कि ये वेजिटेरियन है तो आपको लग रहा था नहीं मुझे खाना चाहिए, आपको उसके प्रति लगाव था, अट्रैक्शन था, आकर्षण था, लेकिन जैसे ही पता लगा कि नहीं ये नॉन वेजिटेरियन है, उसके प्रति विकर्षण हो गया, है ना, उसके प्रति लगाव खत्म हो गया और आपने उसे किनारे एकदम कर दिया, अपने दिमाग से निकाल दिया। तो ये जो उबने की जो बात है, पढ़ाई से उबने की बात, अपने किसी भी काम से उबने की बात, अब आपको सोचना है कि यार ये विचारों के स्तर पर होता है या मन के स्तर पर होता है, ये आपको सोचना होगा। फिर दोस्तों एक डिजायर होती है, इच्छा होती है, इच्छा और मन में थोड़ा सा फर्क होता है। इच्छा तो बहुत जल्दी आती रहती है, जाती रहती है, आप देखते हैं ना, डिजायर्स पैदा हुई, हम लहरों की तरफ ही चली गई, लेकिन मन थोड़ा सा उससे ज्यादा लंबे समय तक रहता है, या कह लीजिए कि इच्छाओं का जो एक तरीके से जो प्रदर्शन होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, वो मन पर होता है, लेकिन मन इच्छा की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, है ना। अब सवाल ये है कि जब आप इन सब पर सोचेंगे तो चुनौती जो आपके सामने आएगी वो ये है कि कितनी गहराई से सोच पाते हैं। और मित्रों आपको एक उत्तर मिलेगा, आप अलग अलग करके सोचिए, उदाहरण ला ला करके अपने दिमाग में सोचिए, अपनी ही घटनाओं को सोचिए कि मैं इससे क्यों उबा, फिर मैं उससे क्यों उबा, फिर मैं उससे क्यों उबा, अपने ही बारे में सोचिए, दूसरों के ऊपर मत जाइए। फिर पक्का मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उत्तर मिलेगा कि ये जो मन है जो मुझे उबाता है, ये जो मन है आपको निष्कर्ष में मिलेगा ये उबाता है। थॉट नहीं उबाते, इच्छाएं भी नहीं उबाती, क्योंकि इच्छा की तो ड्यूरेशन ही बहुत कम होता है, एक तितली की तरह जो 24 घंटे या 3 दिन या 1 महीने जीती होगी, या एक मच्छर की तरह जो कुछ ही दिन में खत्म हो जाता है, वो तो बहुत कम ड्यूरेशन होता है इच्छाओं की। तो आपको बिल्कुल यही निष्कर्ष निकलेगा कि मन आपको उबाता है। अब मित्रों फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जब ये आपका मन आपको उबाता है, ये निष्कर्ष मिल जाए, तो आज इसी प्रश्न के साथ मैं इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को खत्म करूंगा। कल फिर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, वो ये कि ये जो मन जो मुझे उबा देता है, कहीं लगा देता है, कहीं टिकाए रखता है, कहीं उबा देता है, तो ये जो मन है ये किसका है, मेरा है या और किसी का है? अब आपको यहां पर सोचना है, राइट। मेरा है या और किसी का है, या इसको इस रूप में भी कह लीजिए कि ये मेरे नियंत्रण में है या मैं इसके नियंत्रण में हूं, बस यही मेरा कहना है, क्योंकि अगर मन आपका है तो वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए, अगर वो आपका नहीं है तो आपके नियंत्रण में नहीं है। सीधी सी बात, आपकी जो घर की कार है तो वो आपके अपने नियंत्रण में है, लेकिन जो टैक्सी है वो तो आपके अपने नियंत्रण में नहीं है ना। तो फिर टैक्सी जो मन में आएगा अपने ढंग से करेगी। आप कहेंगे कि भैया 8 बजे आ जाओ, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो कह देगा कि नहीं, मैं तो फुर्सत में नहीं हूं, मेरी तो ऑलरेडी बुक है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। लेकिन अगर आपकी अपनी कार है तो आप उसे दिन में 8 बजे, क्या रात में 3 बजे ले जाइए रेलवे स्टेशन, कौन मना कर सकता है, क्योंकि उस पर आपका नियंत्रण है। तो अपने मन के बारे में दोस्तों ये सोचिए, और इसे हम फिर कल आगे पूरा करेंगे। आप लोगों की जो और समस्याएं हो, खासकर इस ऊब को लेकर के, इस ऊब की बात करते करते सच पूछिए तो मुझे ऊब होने लगती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे आज लिया है। तो प्लीज इसके बारे में मुझे बताइएगा, तो कल फिर मैं उनको भी शामिल करके फिर आप लोगों के उसके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। कल के AIR न्यूज में कुछ विशेष बातें नहीं है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करें। इसलिए दोस्तों इससे पहले कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं, मैं एक आपको घोषणा ही कर दूं, इसलिए कि पता लगा कि आपने, मैंने कह दिया ना कि न्यूज के बारे में कुछ विशेष नहीं है, तो आप लोग सोचेंगे यार अब तो कुछ विशेष नहीं है सुनने का, तो छोड़ो, चलो अब कौन 15 मिनट खराब करे, बंद करो और अपना दूसरा काम निपटाओ। ज्यादातर लोग यही करते हैं, इसलिए आप लोगों को बता दूं कि नो डाउट न्यूज पर हम बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन मैं आज थोड़ी सी बातें आपसे जो मेन एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विस का, उसके बारे में चर्चा करूंगा। मेरे पास गुरविक मान का एक SMS आया था कि सर इसके बारे में कुछ बताएं, और इसके बाद एक स्टूडेंट का भी मेल आया अंशिता पांडे का गोरखपुर से कि इसके बारे में भी कुछ बताया जाए, आंसर राइटिंग के बारे में उन्होंने खासकर कहा। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं, होंगे ही, हो क्या सकते हैं, जिनका पेपर बहुत अच्छा बना हो और जो उम्मीद कर रहे हों कि उनको मेन्स में बैठने का मौका मिलेगा और वो उसके हिसाब से तैयारी भी कर रहे हों, तो उनको गाइड करने के लिहाज से मैंने सोचा कि आज का ये जो समय थोड़ा सा बचेगा तो उसको मैं मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में कुछ चर्चा करूं। तो आप लोग इसे बंद न कर दें और छोड़ करके न चले जाएं और कहीं बाद में आप लोगों को अफसोस न हो, इस लिहाज से मैं इसकी घोषणा पहले से कर रहा हूं। मित्रों कल के जो AIR न्यूज में आपने देखा कि खबर कुछ ऐसी विशेष नहीं थी, लेकिन एक दो छोटी छोटी जो खबरें हैं उनके माध्यम से मैं एक प्रकारांतर वाली बात करूंगा कि जो उनसे एक रिफ्लेक्ट होता है, सीधे सीधे घटनाओं पर तो नहीं, लेकिन वो घटनाएं हमें सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में जो एक दिशा निर्देश देती हैं या जिस टॉपिक की तरफ हमारा ध्यान ले जाती हैं। दोस्तों अभी बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और आप बिहार के चुनाव में आप देखिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक स्टेट के चुनाव होने जा रहे हैं, राइट? आप देखेंगे कि खासकर जब राज्यों के चुनाव होते थे, पहले अगर हम पॉलिटिकल अपने सिनेरियो पर जाएं तो पहले तो कांग्रेस ही जीत करके आती थी, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, हमारा डेमोक्रेसी का वो एक स्टेज, हमारे डेमोक्रेसी की वो एक स्टेज थी। इसके बाद रीजनल पार्टी इमर्ज होनी शुरू हुई, राइट? तो जब रीजनल पार्टी जैसे AIDMK, DMK, तेलुगु देशम, समाजवादी पार्टी, BSP है ना, ये सब एक तरह से रीजनल पार्टी, भले ही इनको राष्ट्रीय मान्यता भी इनमें से कुछ को मिली फिर हट गई, लेकिन रीजनल पार्टी मतलब ये अपने अपने स्टेट के जो इच्छाएं थी, जरूरतें थी, उनको पूरा करने का वायदा करके सत्ता में आई। तो इनका चूंकि आधार पूरे देश में नहीं था तो अपने अपने राज्यों में इन्होंने सरकारें बनाई, राइट? ये सेकेंड स्टेज आई हमारे डेमोक्रेसी की। जो अब थर्ड स्टेज दिखाई दे रही है दोस्तों, इस सेकेंड स्टेज का असर यह हुआ कि जब राज्यों में रीजनल पार्टीज आने लगी तो वहां से जब स्वाभाविक है कि उन्होंने रिप्लेस किया कांग्रेस को, तो कांग्रेस का आधार सिकुड़ने लगा। तो जब राज्यों में कांग्रेस का आधार सिकुड़ा तो स्वाभाविक था कि उसका इंपैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी पड़ना था, तो केंद्र में भी फिर कांग्रेस का आधार सिकुड़ने लगा। तो ऐसी स्थिति में केंद्र में भी फिर गठबंधन की सरकार बनने लगी, मतलब कांग्रेस को भी इस बात की जरूरत महसूस होने लगी कि वो जब लोकसभा के चुनाव हो तो राज्यों के स्तर पर इन रीजनल पार्टी से समझौता करे, गठबंधन करे, राइट? तो केंद्र में आप देखिए कि 89 के बाद में फिर 89 आपके गठबंधन की सरकारें बनने लगी जो अभी तक चल रही है। बीजेपी पहली बार पूरी तरह से बहुमत में आई है लेकिन सरकार गठबंधन की है, हालांकि यदि वो चाहे तो दूसरों को किनारे कर सकती है, अकेले के दम पर सरकार चला सकती है, लेकिन वो भी गठबंधन की सरकार, आप देखते हैं शिवसेना से, अकाली दल से, इन सबके साथ उनका गठबंधन है। मित्रों, अब जो एक नई स्टेज दिखाई दे रही है, खासकर अभी जब भारतीय जनता पार्टी इतनी जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ लोकसभा चुनाव में जीत कर आई है, तो एक विचित्र सी हलचल अब आपको रीजनल लेवल पर दिखाई दे रही है। पहले रीजनल लेवल पर होता क्या था कि मान लीजिए कि दो पार्टी तो रहेंगी ही, जैसे उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, ये दो प्रोमिनेंट हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से, लगभग 25 सालों से, कभी इसकी सरकार कभी उसकी सरकार, बस ये चल रहा है। इसी तरह से तमिलनाडु में देखिए AIADMK, इस तरीके से सरकारें चल रही है ना। तो ये दो प्रोमिनेंट पार्टी तो होती थी, तो अपने अपने दम पे चुनाव लड़ती थी। अब जो तीसरी स्टेज अब दिखाई दे रही है कि अब ये जो बड़ी पार्टियां थी रीजनल लेवल पर, वो भी अब दूसरों के साथ गठबंधन कर रही हैं। उनको भी अब ये डाउट होने लगा है कि हम अपने दम पर सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। जैसे आप देखें बिहार में ही नीतीश जी अभी प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। लालू प्रसाद जी की जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन है, फिर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम अकेले के दम पर हो सकता है कि सत्ता में आ ही ना पाए। भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर के न्यूज में बात हो रही थी कल, वहां बिहार में बहुत ज्यादा आधार नहीं है अगर अभी हम देखें तो। हालांकि है बिहार में उसकी स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी प्रोमिनेंट लेवल पर नहीं है। तो वो भी दूसरी पार्टियों के साथ कर रही है, रामविलास पासवान जी की पार्टी के साथ, मांझी राम जी की पार्टी के साथ, या दूसरी पार्टी के साथ। तो इस तरह से गठबंधन बन रहे हैं। तो ये नेक्स्ट जो स्टेज है, ये स्टेट में भी गठबंधन की स्थिति पैदा हो रही है। मित्रों, इसकी तरफ मुझे आपको ध्यान दिलाना था, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, देश की जो राजनीतिक स्थिति, वो आपके मेंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मित्रों, जो दूसरी खबर थी वो झाबुआ में विस्फोट की खबर है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक खबर है। उसमें आप केवल एक पॉइंट देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक खबर है, इतने लोग मारे गए, लगभग 100 लोग मारे गए, इतने लोग घायल हो गए हैं, इससे दर्दनाक स्थिति और क्या हो सकती है, क्योंकि ये मैन मेड कैलेमिटी है, ये कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, है ना। ये कैलेमिटी, ये जो आपदा है, एक ऐसी आपदा है जो व्यक्ति की भूलों के कारण है, चाहे व्यक्ति की भूल कह लीजिए या कह लीजिए कि प्रशासन की उदासीनता। क्योंकि मित्रों, जहां विस्फोट हुआ है वो सामान रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, राज्य सरकार लाइसेंस देती है, लाइसेंस किसी को दिया गया, सामान कोई कहीं रख रहा है, रखने के लिए कहीं दिया गया था लेकिन वो रख कहीं रहा है, उसका रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है। अदरवाइज रूल्स रेगुलेशन सारे बने हुए कि इस तरीके से रखना चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, दूर दराज के एरिया में होने चाहिए। आप देखिए कि आपके जो डिपो होते हैं, जो आयल्स, इंडियन आयल्स के और इन सब के, वो शहर से बाहर रखे जाते हैं कि बाय द वे यदि कोई दुर्घटना हो भी गई तो कम से कम उसमें जन धन की उतनी हानि न हो। तो यहां पर आपको केवल यह देखना है कि ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं जो केवल इंप्लीमेंटेशन के कमी के कारण होती हैं, और इसीलिए कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि यह स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण हुआ है और इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। तो ये जो स्थानीय प्रशासन किस तरीके से काम करता है, क्यों लापरवाही होती है, क्यों इस तरीके से चीजें घटनाएं घट जाती हैं, इनको लेकर के आप थोड़े से समय के लिए इस पर विचार कर सकते हैं। या कभी अगर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन पूछा गया प्रशासन के ऊपर, या आपके जनरल स्टडीज मेंस में ही पूछ लिया गया, तो एक उदाहरण के तौर पर आप इस घटना को मेंशन कर सकते हैं। मित्रों, केवल ये दो ही इंपॉर्टेंट खबर थी। इसके बाद संकटग्रस्त यमन में जो हमारे करीब 70 लोग गुजरात के फंसे हुए हैं उसके बारे में है। तो आप देखिए कि यमन कहां पर है, नक्शे में थोड़ी सी तकलीफ उठाइए, जानने की कोशिश कीजिए कि यमन कहां है, किस महाद्वीप में है, उसके आसपास और कौन से देश हैं, और वहां क्या क्या चल रहा है, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। दोस्तों, अब मैं आता हूं मेन एग्जामिनेशन की तैयारी के ऊपर। फ्रेंड्स, एक बात मैं शुरू से कहता रहा हूं, और हालांकि अब उसके लिए वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि सही मायने में यदि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इससे पहले कि आप प्री के लिए एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करें, मेंस की आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि जिन्होंने अब ऐसा नहीं किया होगा उनके लिए अब थोड़ा सा मेरी इस बात को पचा पाना मुश्किल हो सकता है, उनके लिए ये मेरी बात थोड़ी सी उनको निराश करने वाली भी हो सकती है, लेकिन वो निराश बिल्कुल ना हो, ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र रास्ता है, ये तो मैं कभी कहता ही नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तब आप अगर पूरी तरह से उस समय तैयारी कर लेते तब आप ये जो 3 महीने का आपको समय बचता है, देखिए अगस्त में एग्जाम होते हैं किसी भी समय, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, अगस्त में हो जाते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपके पास 3 महीने का वक्त बचता है, राइट। अब आप इन 3 महीनों में क्या करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो 3 महीने हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमारे लिए कंटेंट इकट्ठे करने का वक्त नहीं है, चीजों को याद करने का वक्त नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है, जो कुछ भी हमने याद किया है, उनको शेप देने का वक्त है, कि उनको याद कर करके हम इकट्ठा करें, प्रश्न लें और फिर देखें कि उस प्रश्न के उत्तर के रूप में मेरे दिमाग में वो सारे कंटेंट फटाफट फटाफट आ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि एक बीच में चुंबक को रख दीजिए तो उसके चारों तरफ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े फैले होंगे, कण फैले होंगे, वो फटाफट चुंबक की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, बड़े प्यारे तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। हमारे दिमाग में भी ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि यदि मैं एक टॉपिक पर कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं तो साल, डेढ़ साल, दो साल तक अपनी तैयारी के दौरान उस टॉपिक पर मैंने जो जो कुछ भी पढ़ा है वो फटाफट उन लोहे के छोटे छोटे कणों की तरह मेरे दिमाग के चुंबक की ओर आकर्षित होने लगे, और फिर मेरे दिमाग में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं फटाफट उनकी एनालिसिस करके उनमें से जो फालतू की घटनाएं हैं या जो कमजोर घटनाएं हैं उनको किनारे कर दूं, क्योंकि सबको तो मैं ले भी नहीं सकता, 200 शब्द ही मेरे पास है लिखने के लिए, तो बेकार की चीजों को मैं फटाफट किनारे करूं और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको लेकर के और अपना उत्तर लिखना शुरू कर दूं। मित्रों, ये दिमाग की एक क्षमता होती है, और दिमाग में ये क्षमता तब आती है जब आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अपनी जिंदगी में आपने, मैंने, किसी ने भी एक भी चीज ऐसी हासिल नहीं की है जो बिना प्रैक्टिस के मिल गई हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो चलना हो, चाहे वो बैठना हो, पढ़ना हो, खेलना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर चीज हमने प्रैक्टिस से हासिल की है। इसीलिए जो उत्तर लिखना भी है वो प्रैक्टिस से संभव हो सकता है। दोस्तों, आप देखते हैं कि जनरल स्टडीज में जो 2 आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, इसके बारे में तो आप फ्री ही हैं, पहले से क्यों नहीं तैयारी कर सकते, आपकी तैयारी पहले से हो जानी चाहिए। हम जैसे लोग जो थे, हम लोगों के समय में तो 2 ऑप्शनल लेने पड़ते थे, और उसमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऑप्शनल प्री में भी होता था, तो एक सब्जेक्ट तो इसी रूप में तैयार हो जाता था कि प्री में चूंकि रहना है तो वो अच्छे से कमांड हो जाती थी, दूसरा एक और करना पड़ता था। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम विषय के उस दूसरे संकट से बचे हुए, और उसका जो शिफ्ट हुआ है वो जनरल स्टडीज में शिफ्ट हो गया, जो बड़ी बड़ी प्यारी शिफ्टिंग है, क्योंकि जनरल स्टडीज तो बहुत बहुत खूबसूरत पेपर है जनरल स्टडीज का, और सच पूछे तो उसके लिए अब आप कैसे तैयारी करेंगे। तो ऑप्शनल की बात तो दोस्तों मैं करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसके करने का कोई मतलब नहीं है, सबके आप लोगों के अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो कंपलसरी पेपर है जिसमें जनरल स्टडीज है, 4 पेपर उसके हैं, और नो डाउट एसे राइटिंग है ना, मैं जनरल हिंदी और जनरल लैंग्वेज और जनरल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, जो इनकी तैयारी है ये 3 महीने में मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई कैसे कर सकता है, क्या उसका आधार हो सकता है। घटनाएं घट गई, 1 साल, 1.5 साल की घटनाएं पूछी जाती हैं, और मैं मान करके चलता हूं कि सितंबर तक की घटनाएं पूछी जाएंगी, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम है तो सितंबर तक की घटनाओं को ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं। अब वो जो घटनाएं थी वो घट चुकी हैं, जिन पर आधारित प्रश्नों के आने की सबसे अधिक संभावनाएं रहती हैं। आप देखेंगे कि अगर आप फर्स्ट पेपर को, जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर को आप थोड़ा सा हटा दें, है ना, उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो डेफिनेटली वो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, वो किताबों के आधार पर होते हैं। लेकिन जो बाकी होते हैं, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस है, या कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, पॉलिटी सिनेरियो कह लीजिए, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक्स है, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं जो बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं, वो तो करंट पर आधारित होते हैं। तो अब जो 1 साल, 1.5 साल जो बीत चुका है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, अब उसका आप कैसे मूल्यांकन करेंगे, कैसे अनुमान लगाएंगे। और मैं आपको बताऊं मित्रों, अगर आप सोच रहे होंगे कि पिछले 1-1.5 साल की मैगजीन्स कोई उठा लेंगे और उस मैगजीन्स के आधार पर आप अनुमान लगा लेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैगजीन्स तो बहुत मोटी मोटी होती हैं, कैसे अनुमान लगाएंगे। मैगजीन्स के आधार पर अनुमान लगाने का की कोई वैज्ञानिकता ही नहीं है। अनुमान तो आप अभी जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तभी लगा सकते हैं कि कौन किस पर हेडलाइन थी, किस पर सबसे ज्यादा डिबेट हुआ, कौन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, किस पर सबसे ज्यादा आर्टिकल लिखे गए, किस पर एडिटोरियल लिखे गए, किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, सबसे ज्यादा बहस किस पर हुई। ये चीजें बताती हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है। वो सब चीजें तो अब आपके दिमाग में से निकल चुकी हैं, लेकिन मित्रों जो है वो हो चुका है। अभी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को आप जो भी रूप देना चाहते हैं आप उसे रूप दें। फिलहाल मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा वो ये कि प्लीज आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। आप देखें एक डेढ़ महीने एक डेढ़ साल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं देश में घटी अलग अलग फील्ड्स की, और इसके बाद उसके अप्लाइड फॉर्म पर जाइएगा, उसके बहुत ही व्यावहारिक पक्ष पे जाइएगा, है ना, बहुत हाई फाई उस पर मत जाइएगा। देखिए कि कौन कौन सी घटनाएं थी, उन पर कंटेंट जुटाइए, भले ही तीन तीन चार चार पॉइंट एक घटना की ले लीजिए, उनको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, और कम से कम ये तो हो कि भाई 20 प्रश्नों में से कम 10-12 प्रश्न तो बहुत अच्छे से करके आ सके। तो जो बहुत चर्चा में रहे हैं आप केवल उन्हीं टॉपिक्स को लें और उन पर कम से कम लिखने की प्रैक्टिस कर लें। बाकी ठीक है, बिना प्रैक्टिस के भी जब आएगा तब आप लिख लेंगे, इस आत्मविश्वास के लिए अपने आप को तैयार करें। तो मित्रों फिलहाल मैं इसके बारे में इतनी ही बात करना चाहूंगा। अंशिता पांडे ने पूछा है कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए। अंशिता ये बहुत बहुत कठिन काम है, सारा कमाल तो इसी का है। ये मैं आरडीओ के जरिए नहीं बता सकता कि कैसे लिखे जाए। फिलहाल मैं केवल एक काम आपको मैं एक जवाब दे सकता हूं कि मेरी जो किताब है आप आईएएस कैसे बनेंगे, उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए। वो किताब आप ले सकती हैं, उसमें वो शायद आपको वो जो चैप्टर है आपकी कुछ मदद कर सके। तो मित्रों इस मेंस एग्जाम के बारे में इतना ही। न्यूज़पेपर्स में आज कुछ खास नहीं है, जो भी हैं वो नॉलेज सेंटर में डाल दिए गए हैं तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं आता हूँ ईमेल पर। बहुत से मेल आए हैं और आज मैं बहुत से स्टूडेंट के नाम भी लेने जा रहा हूँ क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा थी मेल की। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मेल लिखने के लिए। तो दोस्तों कुछ के नाम हैं, सुप्रिय मणि शुक्ल मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, हर्षवर्धन, अभिषेक शर्मा मुरैना से, सोनाली कौशल ग्वालियर से, गौरव धीमान चंडीगढ़ से, भूपेंद्र रावत पटियाला से, पूनम पुंडीर देहरादून से, संगीता गया बिहार से, विनय कुमार पांडे इलाहाबाद से, रामवीर सिंह गुना से, ओम राज मीणा जयपुर से, चितरंजन कुमार, इंद्रजीत देवोल वाशिंगटन अमेरिका से, दिवाकर कुमार पटना से, हसीब अहमद कतर दोहा से, वरुण कुमार पांडे इलाहाबाद से, अविनाश खाखरे बालाघाट से, सचिन कुमार सिंह दुर्ग छत्तीसगढ़ से, नृप शाह अहमदाबाद से, रजत कुमार बोलपुर से और राम कुमार दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।